16. No more argument, Mr. Singhania. वही अरमान को अंश के साथ देखकर आस्था के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि जिस तरह से अरमान ने अंश पैदा होने पर बिहेव किया था उसके बाद वो अब पूरी तरह से बदल गया था। अब आगे, अंश के साथ होने पर वो एक अलग लेवल का आदमी लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई डेविल किंग है या इसके अंदर कई तरह के खतरनाक चेहरे छुपे हैं जो लोगों की रूह तक को कंपा देते हैं। फिलहाल अंश, जिसके कानों में आस्था के भेजे गए मैसेज की आवाज सुनाई दे रही थी, उसने रोनी सी शक्ल बनाकर सोचा, मम्मा कब से बुला रही हैं, लेकिन यहां मेरी डेविल डैडी को तो मुझे देखने से ही फुर्सत नहीं है। अगर मैं रो दिया तो कहीं ये मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, बस मुझे इसी बात का डर है। अब मैं क्या करूं, कैसे अपने डेविल डैडी को बोलूं कि वो मुझे मेरी के पास लेकर मम्मा के पास चले। लेकिन तभी उसके कानों में आस्था की चंचल आवाज सुनाई दी, मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको मैसेज कर रही हूँ। वो मैसेज मैंने अंश को वापस लाने के लिए भेजे थे। इतना सुनते ही अरमान अलर्ट होकर चौंक गया और आस्था को नाखुश होकर देखने लगा। वहीं अंश ने राहत की सांस ली, चलो कम से कम मेरी मम्मा तो मुझे लेने आ गई, वरना ये डेविल डैडी तो मुझे पूरी रात यूं ही घूरते रहते। तब अरमान आस्था को अनदेखा करते हुए जल्दी से बोला, ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए अब लेट हो गया, सोते हैं। उसके लहजे में हल्की सी हड़बड़ाहट थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, क्योंकि अरमान की पर्सनालिटी उसे इस तरह से एक छोटा बच्चा बनकर खेलने की इजाज़त ही नहीं देती थी। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि लोग उसका नाम सुनते ही अजीब ही तरह का डर महसूस किया करते थे। लेकिन इस वक्त अरमान अंश के साथ पूरी तरह से छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो पूरी रात अंश को इसी तरह से निहारते हुए बिता देता। फिलहाल आस्था मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसने अंश को अपनी गोद में ले लिया और अरमान बेमन से उसे ही देखता रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल का टुकड़ा उससे छीन लिया हो। लेकिन फिलहाल अंश को गोद में लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का दिल, उसी की मोहब्बत थी, यानी आस्था। तो अरमान मुस्कुराकर रह गया और जल्दी ही अंश और आस्था के साथ अपने रूम में आ गया था। अब आस्था ने जल्दी से अंश के कपड़े चेंज किए और खुद भी जैसे अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अब आस्था खुद को संभालते हुए ना समझी में अरमान की तरफ देखने लगी और शांत आवाज में बोली, अगर मैं इन कपड़ों में सोऊंगी तो अंश को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तब अरमान आस्था को मधोशी भरी नजरों से देखकर अपने करीब खींचते हुए बोला, आई नो आपको कपड़े चेंज करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन आपने इतने अच्छे कपड़े मेरे लिए ही तो पहने हैं ना, राइट? तो थोड़ी देर तो मुझे जी भर के देखने दो। अरमान की बातें सुनते ही आस्था के गाल टमाटर जैसे लाल होने लगे, लेकिन जैसे तैसे आस्था ने अपने हाथों को उससे छुड़ाते हुए तिरछी नजर से इशारा किया, बच्चा देख रहा है, कुछ तो शर्म कीजिए। वहीं अंश अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, सॉरी डेविल डैडी मम्मा, लगे रहो, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। फिलहाल अरमान ने आस्था का हाथ छोड़ दिया था और मुस्कुराकर एक बार फिर अंश के पास आ गया। आस्था जैसे ही फटाफट से कपड़े चेंज करके वापस आई, वैसे ही उसने देखा कि एक बार फिर अंश अरमान की गोद में था। ये देखकर आस्था को फिर से हल्की सी जलन महसूस हुई और वो मुंह फुलाते हुए जल्दी से बोली, ये क्या, जब भी आपको मौका मिलता है आप अंश को गोद में लेकर बैठ जाते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं अंश की मम्मा हूँ? और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को माँ की जरूरत होती है और इसे भी अपनी मम्मा की जरूरत है ना बेबी, आप हटिए। ये बोलकर आस्था ने एक बार फिर अरमान से अंश को गोद में ले लिया था। वहीं अरमान को एक बार फिर अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो अंश पर पूरा अधिकार सिर्फ उसका है, लेकिन उसके बच्चे को लेने वाली आस्था थी तो वो कुछ नहीं कह पाया। जल्द ही आस्था ने अंश को अपने लेफ्ट साइड में लेटा दिया था और बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर उसे चूमने लगी थी। वहीं अरमान बार बार उठकर अंश को झांक कर देखता और फिर आकर लेट जाता, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बेचैनी से भर गया था। अचानक वो उठकर बैठ गया क्योंकि ये सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आस्था को घूरते हुए कड़क आवाज में बोला, आस्था आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? आप उसको मेरे पास भी तो लिटा सकती हैं ना, मैं अपने बच्चे के साथ सोना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अपनी आईब्रो चकाई और नाखुश होते हुए उससे पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं, अंश मेरे बिना कैसे सोएगा? अंश मेरे साथ ही सोएगा, वो आपके साथ नहीं सोएगा, समझे आप? अब ये सुनकर अरमान आस्था को घूरते हुए बोला, आफत तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो, मैंने कहा ना अंश मेरे साथ सोएगा मतलब मेरे साथ सोएगा। इतना बोलकर अरमान ने अंश को गोद में उठा लिया था। वहीं आस्था भी उसकी बात सुनकर अब चिढ़ गई और उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। उसने कुछ अनमने ढंग से अरमान को देखते हुए टोका, ओ हेलो मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अंश को मुझे दीजिए प्लीज, अंश मेरे ही साथ सोएगा। वहीं अंश बीच बीच में आड़े टेढ़े मुंह बना रहा था, मानो कहना चाह रहा हो, डेविल डैडी मम्मा क्यों झगड़ रहे हो, कहीं आपके झगड़े में इस नन्ही सी जान को चोट ना लग जाए। लेकिन तभी आस्था की तीखी आवाज सुनाई दी, देखिए आप इस तरह से मुझसे झगड़ नहीं सकते हैं, मैंने कहा ना अंश मेरे पास सोएगा मतलब मेरे पास सोएगा। वहीं अरमान भी अब इसी बात पर अड़ा हुआ था, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ सोएगा। फिलहाल दोनों मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। लेकिन तभी आस्था के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और एकदम से उसे कुछ ख्याल आया और उसने मन ही मन आह भरी, फिर धीमी मगर प्यार भरी आवाज में अरमान से बोली, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अंश हम दोनों के साथ सोए। ये सुनकर तो अरमान का दिल एकदम से आश्चर्य में डूब गया और वो आस्था की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आस्था ही इन बातों को लेकर बवाल मचा रही थी। तभी उसे फिर से आस्था की आवाज सुनाई दी, ये हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों की तरह क्यों लड़ झगड़ रहे हैं। अरे हम इस तरह से लड़ झगड़ नहीं सकते, क्योंकि अब हम मम्मी डैडी बन गए हैं, अब हमें मैच्योर होना होगा। अगर हमें अच्छे माता पिता बनकर एक बच्चे को पालना है तो हमें इस तरह से झगड़ने का कोई हक नहीं, और अगर हम इसी तरह से झगड़ेंगे तो हमारे बच्चे पर इसका गलत असर पड़ेगा, है ना। अब आस्था की बात सुनकर अरमान को हैरानी होने लगी और उसने मन ही मन सोचा कि वो खुद थोड़ी देर पहले किस तरह का बर्ताव कर रहा था, अंश को लेकर आस्था के साथ बच्चों की तरह झगड़ रहा था। आखिरकार अरमान ऐसा कैसे कर सकता है, वो अरमान सिंघानिया है, उफ डेविल किंग है, उसे इस तरह से अनमेच्योर बिहेव करने का कोई हक नहीं। ये याद आते ही अरमान ने एकदम से अपने सर पर हाथ मार लिया था। एक पल को उसे ऐसा लगा मानो जैसे आहान की आत्मा उसके अंदर घुस गई हो और वो बच्चों जैसा बिहेव कर बैठा। फिलहाल अरमान ने केवल सिर झुकाकर आस्था की ओर देखा और जाकर चुपचाप बेड पर लेट गया। तब आस्था भी अरमान के मन की बात समझ गई और वो तुरंत ही अंश को लेकर खुद उसकी बिल्कुल बराबर में अरमान के पास लेट गई। इस वक्त अंश दोनों के बीच में लेटा हुआ था।
वहीं अंश के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था मानो जैसे वो कहना चाह रहा हो, या मैं आज मम्मी डैडी दोनों के साथ सोऊंगा। फिलहाल अरमान मुस्कुराते हुए अंश के सिर पर हाथ फेरने लगा था। वहीं आस्था भी बड़े प्यार से अरमान और अंश दोनों को एक टक से देखने लगी, फिर थोड़ी देर बाद बारी बारी से उनके माथे पर किस करके सोने की कोशिश करने लगती हैं। अब अंश तो पूरी तरह से अरमान के पास लेट गया था, लेकिन अब अरमान को आस्था की कमी महसूस होने लगी थी। उसे शुरू से ही आस्था को अपने आप से चिपकाकर सुलाने की आदत थी। अब थोड़ी देर पहले भले ही वो अंश को अपने पास सुलाने की जिद कर रहा था, लेकिन वो आस्था से दूर भी नहीं सो सकता था। अब एक बार फिर अरमान बेचैन होकर उठकर बैठ गया, लेकिन अब तक आस्था सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। ऊपर से उसने फंक्शन में काफी डांस वगैरह भी किया था, तो इसलिए वो थक कर सो गई थी। लेकिन अरमान की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था, इसलिए वो उठकर बैठा और फिर जाकर आस्था के बराबर में लेट गया और उससे थोड़ा सा खिसक कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आस्था तो कब की गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अब आस्था को सीने से लगाने के बाद अरमान को अंश का भी साथ चाहिए था। अब तो वो पूरी तरह से चिढ़ चुका था, लेकिन फिलहाल आस्था को सीने से लगाकर उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था और आस्था की खुशबू को महसूस करते हुए उसने आह भरी और दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरा असली सुकून तो सिर्फ और सिर्फ आस्था है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा सुकून कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आस्था में है। ये सोचते हुए उसने कसकर आस्था को अपनी बाहों में भर लिया था और अरमान का साथ पाकर आस्था मुस्कुराते हुए गहरी नींद में सो गई थी। वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया में एक बड़े से शानदार विला के सामने कितने सारे गार्ड खड़े हुए थे। एकदम वाइट रंग के कोट ब्लेजर पहने हुए, ब्लैक टाई और शानदार पर्सनालिटी वाला एक आदमी वहां से निकलकर बाहर आ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जल्दी ही उसके असिस्टेंट रॉकी ने उससे कहा, बॉस उन्हें होश आ गया है। अब ये सुनकर उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क हो गए। वो तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था और जैसे ही हॉस्पिटल में गया उसने देखा कि हॉस्पिटल के एक बेड पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लेटा हुआ था। उस व्यक्ति को देखकर सफेद कोट पहने हुए आदमी के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बिगड़ने लगे थे। वो दांत पीसते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और जल्दी ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास जाकर उसका हाथ थामकर अपना महंगा गॉगल ठीक करते हुए लाल आंखों से उसकी ओर घूरते हुए बोला, गुरुजी बहुत जल्द मैं आपके साथ हुए जुल्मों का हिसाब लूंगा। उस शख्स को होश आ गया था, लेकिन वो पूरी तरह से बोल नहीं पा रहा था। वो केवल सबकी बातें सुन सकता था। उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी शैतानी झलक रही थी। वहीं सफेद कोट पहने नौजवान उस अधेड़ व्यक्ति का हाथ थाम कर बोला, जिसने आपकी दुनिया उजाड़ी है बहुत जल्द मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। आपने देख लिया ना उसे ज्यादा प्यार करने का नतीजा, बचपन से लेकर आज तक आपने उसे मुझसे आगे रखा, मुझसे ज्यादा प्यार किया, मुझसे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन देखा आपने उसने आपके साथ क्या किया। ये बोलते हुए उस सफेद कोट वाले व्यक्ति की आंखें पूरी तरह से सर्द हो गई थी, लेकिन वहीं उस अधेड़ व्यक्ति की आंखें एकदम लाल होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी और इसी वक्त बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी वो सफेद कोट वाला व्यक्ति तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इस तरह से चुप रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है गुरुजी, आपको बोलना तो पड़ेगा। बताइए, सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है, वो या फिर मैं? वो जिसने आपको मौत के घाट उतार दिया, या फिर मैं जो आपको उससे बचाकर यहाँ ले आया और बिना किसी को पता लगे आपका यहाँ इलाज करवा रहा हूँ? ये कहते हुए उस सफेद कोट वाले व्यक्ति के चेहरे पर धूर्त भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाने लगे। अचानक से वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जोरों से दहाड़ उठा। वो बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी चीख ने माहौल सर्द कर दिया। अरमान सिंघानिया, मैं तुझसे तेरी वो प्यारी चीज छीन लूंगा जो तूने मुझसे छीन ली है। ये कहते ही वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, बुरी तरह से एक शैतानी हंसी हंसने लगा। आपको क्या लगता है, कौन है ये अनजान शख्स और आगे क्या होगा इस कहानी में?